हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जो स्टंट तुमने किया है ना वाइफी, उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहती तो अभी के अभी वापस घर लौट जाओ। मैंने आपके सारे टॉर्चर और इंसल्ट सिर्फ अपने पापा के लिए सहे, लेकिन आज आपने वो वजह ही खत्म कर दी। तो अब से मेरी जिंदगी और उसके फैसलों पर आपका ना तो कोई अधिकार है और ना ही कोई बंदिश। मैं इस नर्क में अब कभी भी वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं। इतना कहकर आर्ना रुदांश का जवाब सुने बिना फोन काट देती है और सामने से आती टैक्सी को रोककर उसमें बैठ जाती है। वहां से वो अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में आर्ना अपने घर पहुंच जाती है। इत्तेफाक से उसे अपने घर के बाहर ही मेन गेट पर नैना मिल जाती है। आर्ना उससे मिलती है। नैना टैक्सी का किराया देने के बाद आर्ना के साथ ही उसके घर के अंदर जाने लगती है कि दरवाजे पर ही उसके पास उसके पापा की अचानक तबीयत बिगड़ने का फोन आता है। वो दरवाजे से ही जल्दी जल्दी में वापस चली जाती है। आर्ना जब घर के अंदर जाती है तो वहाँ सिर्फ उसके पापा ही मौजूद होते हैं। वो अपना सर पकड़े हुए सोफे पर बैठे हुए थे। आर्ना उन्हें यूं मायूस और परेशान देखकर जल्दी से उनके पास जाती है। मिस्टर कपूर जब आर्ना को अपने पास देखते हैं तो गुस्से से बड़बड़ाते हुए वहां से खड़े हो जाते हैं। आर्ना आंसुओं भरी आंखों से, पापा आप परेशान मत ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर कपूर गुस्से से, सब तो बर्बाद हो गया, अब क्या ठीक हो जाएगा? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए अब तुम यहाँ आई हो, तो देखो हो गया मैं बर्बाद, जाओ मनाओ अब खुशियाँ। आर्ना दुखी होकर, ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा आप? आपकी तकलीफ मेरी भी तकलीफ है। मिस्टर कपूर झुंझलाकर, ओह रियली? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अगर सच में ऐसा होता तो तुम हमेशा की तरह यूजलेस और नकारा बनकर मेरे सामने खड़ी नहीं होती। गुस्से से, जानती हो हमारा घर बिजनेस ये सब किसने खरीदा है और कौन अब इसका नया मालिक है? आर्ना असमंजस से मिस्टर कपूर की तरफ देखती है। मिस्टर कपूर, तुम्हारा पति, तुम्हारे पति ने ये सब खरीदा है? इतने दिनों में एक आदमी को काबू नहीं कर पाई तुम? इतनी यूजलेस और बेकार हो तुम कि इतने वक्त में भी अपने पति को अपने कब्जे में नहीं कर पाई, और तो तुमसे क्या ही उम्मीद की जाए अब? आर्ना दुखी होकर मिस्टर कपूर के सामने खड़ी होकर, मैं जानती हूँ पापा, मैंने कभी भी आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया, लेकिन इस बार मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इंसान किसी के भी जज्बातों और भावनाओं की कदर करने वालों में से नहीं है। नम आँखों से, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगी, लेकिन प्लीज पापा मुझे वहाँ नहीं जाना। मिस्टर कपूर इरिटेट होकर, मैं यहाँ अपने लिए ही परेशान हूँ और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा बोझ भी उठाऊँ? देखो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, बेकार में मेरा दिमाग और मत खराब करो, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब तुम जियो या मरो लेकिन तुम्हारा असली घर वहीं है। आर्ना कोई जवाब देती उससे पहले ही रिदांश की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने, समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। मिस्टर कपूर आर्ना की तरफ देखते हुए, आर्ना जाओ अपने घर अभी। आर्ना मिस्टर कपूर के पास जाकर अपना सर ना में हिलाते हुए, प्लीज नो पापा, आप मुझसे कुछ भी करने को कहिए, मैं सब करूंगी, लेकिन मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी, वहां मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर है पापा, नम आंखों से प्लीज मुझे वहां मत भेजिए। मिस्टर कपूर इरिटेट होकर, मैं यहाँ अपने लिए ही परेशान हूँ और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा बोझ भी उठाऊँ? देखो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, बेकार में मेरा दिमाग और मत खराब करो, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब तुम जियो या मरो लेकिन तुम्हारा असली घर वहीं है। आर्ना कोई जवाब देती उससे पहले ही रिदांश की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने, समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। मिस्टर कपूर आर्ना की तरफ देखते हुए, आर्ना जाओ अपने घर अभी। आरना मिस्टर कपूर के पास जाकर अपना सर ना में हिलाते हुए, प्लीज नो पापा, आप मुझसे कुछ भी करने को कहिए, मैं सब करूंगी, लेकिन मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। वहां मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर है पापा, नम आंखों से, प्लीज मुझे वहां मत भेजिए। मिस्टर कपूर इरिटेट होकर, मैं यहाँ अपने लिए ही परेशान हूँ और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा बोझ भी उठाऊँ? देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, बेकार में मेरा दिमाग और मत खराब करो, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब तुम जियो या मरो, लेकिन तुम्हारा असली घर वही है। आरना कोई जवाब देती उससे पहले ही रिदांश की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने, समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। मिस्टर कपूर आरना की तरफ देखते हुए, आरना जाओ अपने घर अभी। आरना मिस्टर कपूर के पास जाकर अपना सर ना में हिलाते हुए, प्लीज नो पापा, आप मुझसे कुछ भी करने को कहिए, मैं सब करूंगी, लेकिन मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। वहां मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर है पापा, नम आंखों से, प्लीज मुझे वहां मत भेजिए। मिस्टर कपूर इरिटेट होकर, मैं यहाँ अपने लिए ही परेशान हूँ और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा बोझ भी उठाऊं? देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, बेकार में मेरा दिमाग और मत खराब करो, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब तुम जियो या मरो, लेकिन तुम्हारा असली घर वही है। आरना कोई जवाब देती उससे पहले ही रिदांश की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने, समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने, समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने, समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने, समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने, समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। रिदांश सर्द लहजे में, बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर कपूर आपने, समझाएं अपनी बेटी को जरा कि अब ये चाहकर भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। अपने पापा की बात सुनकर आरना की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं। रिदांश ने भी उसे अपनी बातों और एक्शन से कम तकलीफ नहीं दी थी, लेकिन फिर भी वो उसके लिए पराया था और उसे कहीं न कहीं उससे कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन उसके पापा, जो उसके लिए पूरी दुनिया से बढ़कर थे, उनकी ऐसी कड़वी बातें उसका दिल छलनी कर गए थे। उसे अफसोस हो रहा था कि वो अपने पापा को ही उनके लिए अपने दिल के जज्बात और प्यार को नहीं समझा पा रही थी। तभी वहाँ बाहर से राहुल आता है, जो आरना को देखकर जल्दी से सीधा उसके पास जाता है और उसे अपने गले लगा लेता है। आरना भी उसे वापस गले लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये देखकर रिदांश के भाव अचानक ही सख्त हो जाते हैं और वो पलक झपकते ही एक झटके में आरना को राहुल से दूर खींचकर अपने करीब कर लेता है। ये देखकर राहुल के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आते हैं। राहुल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये हरकत करने की? रिदांश सख्त लहजे से, हिम्मत तो तुमने अभी देखी ही कहाँ है मेरी, और ये फालतू की धमकियाँ अपने पास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सिर्फ खोखली धमकियाँ देने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि सीधा करने में रखता हूँ। तो आइंदा से जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ। राहुल गुस्से से रिदांश को घूरते हुए, अरु, तुझे कोई जरूरत नहीं है इसके साथ कहीं भी जाने की, हम मिलकर कोई ना कोई काम कर लेंगे, लेकिन अब से तुझे इसके टॉर्चर सहने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे साफ कह दे कि तू इसके साथ कहीं भी नहीं जा रही है। आरना अपने आंसू अपनी उंगलियों से साफ करते हुए, मैं मिस्टर अग्निहोत्री के साथ एक पल रुक कर जाऊंगी। राहुल, तू पागल हो गई है, सब कुछ जानते समझते हुए भी तू ऐसा कैसे कर सकती है? आरना, जो मैं कर रही हूँ वही हम सबके लिए ठीक है। राहुल मिस्टर कपूर से, अंकल आप ही इसे कुछ समझाए ना। मिस्टर कपूर, आरना ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। राहुल नाराज होकर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब कुछ जानते बूझते हुए भी आप अनजान कैसे बन सकते हैं? आप अच्छे से जानते हैं कि वो ये सब सिर्फ आपके लिए कर रही है, आप उसे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। आर्ना, राहुल, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है, ये फैसला मैंने खुद अपनी मर्जी से लिया है। राहुल, मगर अरु टू आर्ना दुखी भाव से, प्लीज राहुल कुछ मत कह। रिदांश बोरिंग एक्सप्रेशन से, ओह सो मच ड्रामा एंड ऑल, लेकिन मेरे पास ये फालतू का ड्रामा देखने का फिजूल वक्त नहीं है। आर्ना का हाथ पकड़कर, अब ड्रामा पूरा हो गया हो तो चलो यहाँ से। इतना कहकर रिदांश आर्ना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगता है और आर्ना बोझिल कदमों और मन से बस उसके पीछे चलती रहती है, इस उम्मीद में कि बस एक बार उसके पापा उसे रोक लें। लेकिन हर बार की तरह उसकी उम्मीद किसी शीशे की तरह चकनाचूर होकर बिखर गई थी। बाहर रिदांश गाड़ी का साइड का दरवाजा खोलकर आर्ना को उसमें बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। पूरे रास्ते आर्ना अपने ही ख्यालों में गुम थी और उसकी तंद्रा तब टूटती है जब रिदांश की आवाज उसके कानों में पड़ती है। रिदांश, ईविल मुस्कान के साथ, वेलकम होम वाइफी।